चित्रा सखी को आनंद देने के लिए आपको एक कथा बताते हैं। चित्रा सखी जो है वो धर्म भानु की बेटी है और उनकी माता का नाम है शारदा देवी, नहीं सुभगा देवी, और चिकसोली चिकित्सपुर ये उनका गांव है और ये बरसाने के आगे लगकर ही है ये विलेज चिकसोली, और चिकसोली के आगे जाएंगे तो दभारा गांव आएगा रंग देवी का। तो चित्रा सखी जो है चित्रलेखा जी उनका नाम है। अष्ट सखियों में उनका स्थान कहाँ पर है? राधा कृष्ण मध्य भाग में है, कृष्ण के दाहिनी ओर ललिता जी खड़ी हैं, ललिता जी के दाहिनी ओर चंपकलता देवी खड़ी हैं और चंपकलता जी के दाहिनी ओर चित्रलेखा देवी हैं, उनके दाहिनी ओर तुंग विद्या देवी और राधा रानी के बाई ओर विशाखा देवी है, विशाखा देवी की बाई ओर इंदुलेखा देवी है, यानी यहाँ पर ता और ता, ललिता और चंपकलता, और यहाँ पर विशाखा और इंदुलेखा, समझने के लिए आसान। और बाद में वो दो देवी इंदुलेखा के आगे रंग देवी सुदेवी, इस तरह से हम अष्ट सखी को बहुत ही आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये चित्रा सखी जो है इनके पिताजी धर्म भानु जी बड़े विद्वान थे, शास्त्रों के बड़े धर्म परायण शास्त्र परायण थे, इसलिए ये भी बड़े धर्म पंडिता है। हा? इनके अंदर चित्रपट बनाने की बहुत सुंदर कला है, इनके अंदर बहुत कलाएं हैं। इनके पिताजी बड़े ज्योतिष शास्त्री थे, हस्त सामुद्रिक में भी बहुत एक्सपर्ट थे, तो ये भी ज्योतिष शास्त्र में हाथ पामिस्ट्री हस्त सामुद्रिक उसमें भी बहुत निपुण हैं। और ये राधा रानी के द्वारा बनाए गए वन है ना, खास करके जयवर वन, वहाँ के पेड़ों को बेलियों को वो संवारती हैं, संभालती है, मेंटेन करती है राधा रानी की इच्छा के अनुसार। तो चित्रलेखा देवी को पंछियों की भाषा भी आती है, बस आप पंछियों से बात कर सकती है, और राधा रानी और कृष्ण की लीला में पंछियों का क्या सहभाग होना चाहिए वो तय करती है और उनको बताती भी है, उनके द्वारा वो सेवा कर भी लेती है। और क्या विशेषता है चित्रा देवी की? तो एक बार क्या हुआ, मैंने आपको बताया वो कहा था कथा, लेकिन बहुत जल्दी नहीं बताया, उसको भी थोड़ा विस्तार में बताऊंगा। हम जानते हैं कि श्रीदामा जो है वो कृष्ण के बड़े प्रिय सखाए, नारद मुनि का आशीर्वाद था उनको, और श्रीदामा दिन भर खुश रहते थे कृष्ण के साथ, लेकिन जब रात का शाम का समय होता था कृष्ण को अभी विदाई बाय बाय करने का, तभी वो बहुत दुखी होते थे और रात भर बेचारे विरह में जगते थे, रोते थे। एक दिन कृष्ण को आके उन्होंने बताया, कृष्ण मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, मैं रात को मर जाऊंगा एक दिन, हाँ मुझे तुम्हारा विरह सहन नहीं होता है। अभी कैसा होता है ना, कृष्ण का सब टाइम टेबल फिक्स है, दिन में गौचारण करते हैं, ग्वाल वालों के साथ कूदते हैं, खेलते हैं, माखन चोरी करते हैं, बहुत कहते हैं ना हमारी भाषा में बम्बई के धमाल करते हैं बहुत दिन भर, और रात को जब सूर्यास्त होता है तो फिर वो उनकी विदाई होती है और गोपियों का कार्यकाल शुरू होता है, गोपियां इंतजार करती है। अगर एक चरण पहाड़ी नाम की जगह है, वहां पर एक बार संध्या के समय ना कृष्ण एकदम से गायब से हो गए थे, तो सब ग्वाल बाल भी व्याकुल, गोपियां भी व्याकुल, गोपियां मिलने के लिए तैयारी में है, ये अभी घर जाने की तैयारी में, दोनों व्याकुल। तो ये चरण पहाड़ी नाम की एक पहाड़ी उधर काम में बनने उधर चढ़ गए, वहां से बंसी बजाई उन्होंने, और बंसी बजाई ना तो दो निर्देश किए, ग्वाल वालों को बताया कि मैं हूँ, डोंट वरी, और गोपियों को बताया निश्चिंत रहो मैं आ रहा हूँ। इस प्रकार के दोनों संदेश दिए उनको और शांति के। इस प्रकार से सूर्यास्त होने पर ये ग्वाल बाल दुखी, गोपियां खुश, ऐसा होता था। तो एक दिन श्रीदामा जी आए, बोले बहुत रो रो के, बोले कि मैं तो जी नहीं पाऊंगा, बहुत दिन सह लिया अभी मैं। तो फिर कृष्ण ने कहा, मैया से कहा, मैया मेरा दोस्त जो है ना बहुत व्याकुल रहता है, बहुत दुखी रहता है, वो कह रहा है कि देखो कम से कम तुम्हारा एक चित्रपट मुझे दे दो, तो आपके चित्रपट को देखकर मैं अपने आप को थोड़ी सी तसल्ली करते रहूंगा। तो मैया को बताते हैं कृष्ण, तो मैया कहती है, अरे मैया भी थोड़े लाइट मूड में रहते हैं। तो मैया क्या बोलती है, अरे तुम्हारा चित्रपट बनाने में क्या कठिनाई है, एक कागज ले लो एक ब्रश ले लो, एक काला रंग ले लो, डुबा दो, दो चार स्ट्रोक मार दो, हो गया तुम्हारा चित्रपट, उसमें क्या है? व्हाट इज द बिग थिंग? टेक अ पेपर, टेक अ ब्रश, टेक ब्लैक कलर, टू थ्री स्ट्रोक्स हियर एंड देयर, योर चित्रपट इज रेडी। तो कन्हैया को बड़ा अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, मैया मैं तो इतनी गंभीर बात कर रहा हूँ, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, हाँ हास परियास कर रही हो, आप नहीं जानते कि बात कितनी गंभीर है, मेरा दोस्त वहां जान छोड़ देगा तो मैं कैसे जी पाऊंगा उसके बिना। तो मैया भी हड़बड़ा गई, रही भाई मामला बहुत गंभीर है, चलो कोई बात नहीं मैं इसकी व्यवस्था करती हूँ। और चित्रा सखी को याद किया, चित्रा सखी को बुलावा भेजा। चित्रा सखी समझती है कि मेरा कितना भाग्य खुल गया, यशोदा देवी मुझे बुला रही है, इतना बड़ा भाग्य है मेरा, हाँ यशोदा देवी मुझे आज पुकार रही है, तो सेवा दे रही है, कितना बड़ा भाग्य है मेरा। भाग के आती है तो मैया क्या सेवा है? तो मैया समझाती है उसको, ऐसे ऐसे मामला है, तुम्हें कृष्ण का एक सुंदर चित्रपट बनाना होगा, एक छवि बनानी होगी सुंदर। हाँ माँ मैया जरूर बनाऊंगी। तुरंत जाती है चिकित्सापुर, तुरंत सब सामान इकट्ठा करती है, पेपर इकट्ठा सब कुछ करती है। आप जानते हैं ना वो पेपर आर्टिस्ट लोग क्या करते हैं, बड़ा पेपर लगाते हैं, फिर उसमें ब्रश लगाते हैं, फिर वो। लेकिन इसमें क्या है ना कि विशेष बात होती है, समझो अभी मुझे श्रीजी प्रिया का एक चित्रपट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, कहूंगा कि ऐसे बैठना, हिलना नहीं, ठीक है ना, यहाँ वहां देखना नहीं, ऐसे पोज में बैठना, फिर वो पोज में बैठा कर मैं यहाँ पर ऐसे पेंटिंग निकालूंगा, और उसको हिलना नहीं है, मुझे ही खाली हिलना है बस। तो क्या होता है, कहने का तात्पर्य क्या है कि एक छवि की आवश्यकता होती है, स्थिर छवि की। अभी यहाँ वहां कर खाना खा रही है, कुछ बोल रही है, कुछ गा रही है, गुस्सा कर रही है, तो उसका सभी छवि सभी पकड़ पाऊंगा मैं, एक छवि एक भाव पकड़ पाऊंगा। तो चित्रकार को ऐसा एक छवि की आवश्यकता होती है। तो अभी ठीक है कृष्ण तो है नहीं, तो फिर वो मन में कृष्ण की एक छवि पकड़ने का प्रयास कर रही है, ध्यान लगाकर बैठी, सब कुछ तैयारी हो गई है, जल्दी जल्दी में उसको चित्रपट बनाना है, यशोदा मैया को प्रसन्न करना है, इतना सुंदर मौका मिला है। तो फिर वो ध्यान लगाने बैठ जाती है, और क्या कहें आपको, उसके मन में एक नहीं अनंत छवियां एक साथ प्रकट होती है, कहीं माखन चोरी कर रहे हैं, कहीं गोपियों को छेड़ रहे हैं, कभी गोपियों को रोक के रखा है, कभी गिरधारी, कभी कुछ, कभी गौचारण कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी पेड़ पे चढ़ रहे हैं, कभी जमुना में कूद रहे हैं, कभी जल में खेल रहे हैं। अरे कौन सी छवि पकड़ूं मैं अभी, कौन सी छवि पकड़ूं, इतनी सारी छवियां, इतनी सारी भाव प्रकट हो रहे हैं, मुश्किल है बहुत ये। तो बहुत कष्ट हुआ उसको, तो शुरुआत ही नहीं हो रही है तो चित्रपट बनेगा कैसे। तो फिर दुखी हो गए बहुत, बहुत देर तक किसी छवि पर अपना मन एकाग्र नहीं कर पाई। तो सखियों को बुलाया और बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, आज मुझे इतनी बढ़िया सेवा मिली है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो सखिया भी बहुत कहते हैं ना, वो सरल हृदय बिचारी अच्छी भक्त की है, सखियों ने कहा तुमने राधा रानी की कृपा ली क्या, राधा रानी की परमिशन ली क्या, उसको बताया क्या? नहीं बताया ना, ये तो गलती है तुम्हारी। हाँ अरे तुम हर चीज तो उनको बता के, आज तो मैं लेकिन इतनी एक्साइट हो गई कि एकदम राधा रानी के पास गई, चरणों में गिरी और विनती की, क्षमा मांगी कि मैंने आपको बताए बिना ही ये कृष्ण की सेवा, राधा यशोदा माई की सेवा स्वीकार कर ली और अपने आप करना चाहा, लेकिन मैं क्षमा कर दो, मुझे कृपा दो आपकी, मेरे मन में एक छवि स्थिर नहीं हो रही है। तो फिर राधा रानी ने आशीर्वाद दिया, और राधा रानी ने आशीर्वाद देते ही एक सुंदर छवि चित्रलेखा के मन में स्थिर हो गई, और जैसे तो बहुत कुशल तो थी वो, तुरंत चित्रपट बनाया उसने, और तुरंत चित्रपट बनाया, यशोदा मैया को लाके दिया, यशोदा मैया ने वो कृष्ण को लाके दिया, कृष्ण ने सुदामा को दिया, और सुदामा को कुछ कुछ क्यों ना हो तसल्ली हो गई, सांत्वना प्राप्त हो गई। तो चित्रलेखा के इस कथा से हम क्या सीख सकते हैं, अरे कितनी भी बड़ी कृष्ण की सेवा भी होगी ना, तो राधा रानी का अनुग्रह बहुत जरूरी है, राधा रानी की कृपा, राधा रानी की शरणागति। हाँ श्री जी की शरणागति, श्री जी की शरणागति, वृंदावन के रानी राधा, वृंदावन की रानी राधा, चाकर है त्रिभुवन पति, चाकर है त्रिभुवन पति, श्री जी की शरणागति। अरे त्रिभुवन पति भी शरणागत हैं, उनके अधीन है वो, हाँ श्री कृष्ण की हृदय संजीवनी है वो। अगर श्री कृष्ण प्रेम का सागर है तो उस प्रेम का सागर का मंथन करने के बाद निकलने वाला नवनीत कृष्ण है, नवनीत राधा रानी है, प्रेम नवनीत। देवी पुराण में लिखा है, देवी भागवत में, कि वो महाविष्णु की जननी है। महाविष्णु की जननी है और अंतरंगा शक्ति होने के कारण सब लक्ष्मियों की जननी है। सब जितनी देवियां हैं सरस्वती आदि सब देवियों की जननी है, भवानी देवी की जननी है, कृष्ण की जो पत्नियां हैं उनकी जननी है। ऐसे जितनी 20 शक्तियां हैं कृष्ण की वो सबकी जननी है। परास्त शक्ति ऋग्वेदी वस्तु यते, श्री कृष्ण भगवान की अनंत शक्तियां हैं, उन अनंत शक्तियों में से प्रधान शक्ति जो है वो राधा रानी है, इसको अंतरंगा शक्ति कहते हैं। और उन्हीं की शक्ति होने के बावजूद भी उन्हीं पर नियंत्रण करती है, ये एक विशेषता है। क्यों ऐसा है? श्री कृष्ण स्वेच्छा से उनकी शरण स्वीकार करते हैं, मन से उनकी शरणागति स्वीकार करते हैं, उनकी सारी कृपा सारी करुणा बस सारा रस जो है उनसे प्राप्त करते हैं। उनके चरणों से वेद ध्वनि उत्पन्न होती है, चरणों के नुपुरों के ध्वनि से वेद निर्माण होते हैं। हा? सारा जितना आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत, जितने अनंत विष्णु स्वरूप है उसके अंदर, जितने लक्ष्मी स्वरूप है, जितने वैकुंठ वासी हैं, जितने धाम वासी हैं, जितने भौतिक दुनिया में बद्ध जीव हैं, जितने भी जीवों की सृष्टि है, वो सब जीवों में जो भी कुछ भक्ति है वो सब राधा रानी की तरफ से आती है। हम गर्व नहीं कर सकते कि हमारी भक्ति है, अरे भक्ति देने वाली भक्ति दा देवी कौन है? राधा रानी देवी सबको भक्ति देती है, सबकी भक्ति जननी है, वो जगन माता है वो। हाँ, तो उनका ही स्वरूप बहिरंगा शक्ति के रूप में फिर भवानी देवी का है, फिर वो माया शक्ति बनकर बद्ध जीवों को बांध के रखने के लिए पृथ्वी पर आती है, मतलब भौतिक दुनिया में आती है। तो ऐसी राधा रानी, इनकी कृपा लिए बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जहां से भी सेवा मिली हो, यशोदा माई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनके द्वारा सेवा प्राप्त हुई है, फिर भी उस सेवा जो प्राप्त हुई है उसको सिद्ध करने के लिए कृपा चाहिए राधा रानी की। चित्रा सखी ने अपने जीवन में उसका अनुभव किया और हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा दी। तो ऐसे चित्रा देवी को कैसा है ना कि बड़ी कृपा है भगवान की, ये अलग अलग सखियों से एक प्रकार का रिश्ता निर्माण होना बहुत ही दुर्लभ चीज है। अभी ऊंचे गांव गए तो वहां पर ललिता जी से थोड़ा सा सुना उनके बारे में, तो थोड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर चैतन्य चरितामृत से पढ़ा कि जब गुंडीचा मंदिर का मार्जन हो रहा था ना, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु बड़े व्यस्त थे, जब एक के बैठेगा तो सो जाएंगे आप, तो सब लोग ऐसे अरे आराम से काउच पे लेट कर मत बैठना, ऐसे आराम से मत बैठना, सतर्क बैठना ऐसे, तो आप 2-3 घंटा जगे रह सकते हो, है ना, हम भी जगे रहेंगे आप भी जगे रहेंगे, है ना। तो कथा सुनने के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कथाकार के सामने बैठना चाहिए, पीछे नहीं बैठना चाहिए, और कथाकार से ऊंचे लेवल पे नहीं बैठना चाहिए, तो नीचे लेवल पे बैठना चाहिए, और कथा में पैर फैला कर नहीं बैठना चाहिए, अदब से बैठना चाहिए, सतर्क बैठना चाहिए, आराम की मुद्रा में नहीं बैठना चाहिए। हाँ, चातक, राजहंस, शुक और मीन, इन लोगों की तरह कथा सुननी चाहिए, ग्रहण करना चाहिए सार उसका। एनीवेज, तो मैं क्या कह रहा था बताओ? हाँ, उषा गांव से परिचय हुआ, फिर वो हाँ गुंडीचा मार्जन में चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेम से गुंडीचा मार्जन कर रहे थे, उसने में एक बंगाली भक्त आया, उस बंगाली भक्त ने क्या किया, महाप्रभु के चरणों में जल डाला, हाँ चरणों में डाला, और चरणों से लौट कर जल जो आया उसको तुरंत पी लिया। तो महाप्रभु को बाहर से क्रोध आया, अंदर से आनंद हुआ, बाह्य दृष्टि से उन्होंने क्रोध प्रकट किया, अरे सही नहीं किया तुमने, क्योंकि भक्त के भाव में थे ना, है तो भगवान लेकिन भक्त के भाव में आए हैं। तो फिर वो भक्त भी कैसा उद्दंड, थोड़ा सा मतलब अच्छी उद्दंड लाइए, तो दूसरी बार जल डाला, और दूसरी बार वो वापस जल आया तो उसको पिया, तो महाप्रभु ने और थोड़ा सा रोष प्रकट किया, अरे अच्छा नहीं कर रहे तुम, भक्त को अपने चरण धूलि चरण जल किसको देने को अच्छा लगता है क्या? वो भी ऐसा आदमी है ना, बंगाली भक्त, तीसरी बार जल किया उसके, महाप्रभु के चरणों में जल डाला और तीसरी बार भी जल पिया, तब महाप्रभु बोले हे स्वरूप दामोदर इधर आ जाओ। ललिता जी के अवतार है ना वो, तो स्वरूप दामोदर जी आए, बोले देखो ये तुम्हारे बंगाली भक्त जो है ना, देखो कैसे, कोई मर्यादा नहीं कुछ नहीं, इनके पास कोई कोई शिष्टाचार नहीं, हाँ मैं यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ, मेरे चरणों में जल डालकर पी रहा है, इनको ट्रेनिंग करो, लो इनको सब बंगाली भक्तों को अपने अपने नियंत्रण में लो और इनको ट्रेनिंग दो अच्छी तरह से, क्या करना है क्या नहीं करना है। सुंदर लीला है, बहुत प्रेम की लीला है। तो उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि उस दिन श्री कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में ललिता देवी के छत्र छाया में सभी बंगाली भक्तों को दे दिया। तो हम सब लोग बंगाली वैष्णव संप्रदाय के है ना, गौड़ी संप्रदाय, मतलब क्या हम तो बंगाली वैसे नहीं है लेकिन हमारा संप्रदाय बंगाली संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है। तो हम सब लोग प्रभुपाद जी कहते हैं उस दिन गुंडीचा महाजन के दिन चैतन्य महाप्रभु ने ऑफिशियली सभी गौड़ीय वैष्णवों को ललिता के छत्र छाया में सुपुर्द कर दिया। तो उससे ललिता से थोड़ा सा एक भाव निर्माण हुआ। तो रांझनों गांव गए और वहां पर विशाखा देवी का गांव है, तो वहां पर थोड़ा सा उनसे संबंध हुआ। एक बार तुनेरा गांव में गए थे दर्शन करने के लिए, स्वर्णपुर, हाँ रंग देवी सुदेवी का गांव है, तो सुदेवी के गांव में गए थे तो हमारे भैया वहां पर फिसल के गिर गए थे, एकदम कीचड़ में, सफेद कुर्ता वगैरह पहन के गए थे, बढ़िया सा एकदम, लेकिन एकदम बढ़िया लोटपोट हो गए उसके अंदर। मैंने कहा अच्छा हो गया, ये बड़ी कृपा है तुम्हारे ऊपर, कभी तुम सुदेवी को भूलोगे नहीं ना स्वर्णपुर को भूलोगे। जब भी ऐसे हादसे होते ना, कभी हम यात्रा में गिर जाते हैं, हमारे वो सर्वज्ञ कृष्ण प्रभु बैठे हमारी यात्रा में वृंदावन यात्रा में ना, उनका पैर ना पैर ऐसा पूरा उल्टा हो गया था, लिटरली पैर जो है ना 180 डिग्री में घूम गया था। देखो सुन रहे हो कथा, उनकी रिक्शा से गिर गए थे और पल्स वल्स सब बंद, रक्त प्रवाह बंद, अभी वो खत्म हो जाएगा पैर। तो गिरिराज प्रभु वहां से आए और सोचा कि अभी तो मुंबई या कहीं जाने जाए तो पैर तो खत्म हो जाएगा, गैंग्रेन हो जाएगा, रक्त प्रवाह खत्म हो जाएगा, अभी तुरंत कुछ नहीं करेंगे ना, तो गया पैर। तो उन्होंने कहा कि देखो राधा रानी का नाम लेता हूँ और तुम्हारा पैर इधर ही घुमा देता हूँ, वैसे भी जाने वाला है, अगर घूम गया अच्छा हो गया तो लकी है, तुम अलग है तुम्हारा, नहीं तो मुंबई पहुंचते पहुंचते कहीं आते जाते तो पैर खत्म तुम्हारा। राधा रानी का नाम लिया और रोड पे उधर उधर वो गिरिराजी मुस्कान भंडार है ना, उसके सामने रामजीवाई सत्संग भवन की तरफ, पहले विद्यापीठ चौराहे के आगे तोगला आश्रम के उस तरफ, हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ठाक करके घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तुरंत पल्स चालू हो गया, ठक 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 ठक, ब्लड सप्लाई चालू हो गया। और हमारे बालकृष्ण बाबू बैठे उधर, शायद बालकृष्ण बाबू उनको हवाई जहाज से मुंबई लेके आए भक्ति विधान में और पैर का इलाज किया, और अभी आज हमारे प्रभु जी बहुत चल रहे हैं अच्छी तरह से। तो मतलब क्या, वृंदावन धाम याद रहेगा उनको कभी भी, अरे उस जगह पर मेरा पैर गया था ऑलमोस्ट बच गया। तो धाम में जो भी हादसे होते ना वो बुरी घटना नहीं होती है, वो बुरी घटना होती लगता है उनको, लेकिन वो धाम की याद हमारे हृदय में पूरी ऐसी बस जाने के लिए भगवान कुछ ना कुछ लीला करते हैं। तो वैसे स्वर्णपुर में गए थे तो भैया हमारे फिसल गए थे, तो हमको याद आती है स्वर्णपुर के अनुसार, या हमारे भैया फिसल गए थे। और डबारे गांव में कैसा था, तो हमारी ये क्या कहें आपको बताना जरूरी है ये बात, हाँ क्योंकि ये जो ब्रज है ना, ये ब्रज का जो अंदर का रहस्य है ना भाव, हम जाते हैं ब्रज में, वे कथा सुनते हैं, दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ना अपनी चेतना को ऐसा मोल्ड करना चाहिए कि ब्रज के भाव को हम कैच कर सकें। होता ना रेडियो, रेडियो वो ऑस्ट्रेलिया में बचपन में हम लोग ना वो कमेंटो सुनते थे ऑस्ट्रेलिया की, क्या होता क्या टोनी कोजियर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच सुनते थे, तो दो बैंड बदली करके SW2 शॉर्ट वेव 2 करके उसका कांटा लाते थे उधर और फाइन ट्यून करते थे उसको, तब जाकर वो ऑस्ट्रेलिया की जो कमेंट्री सुनाई पड़ती थी। मतलब क्या ट्यून करना जरूरी है, ट्यून करेंगे ना तो फिर वहां की आवाज सुनाई पड़ेगी, फिर विविध भारती सुनना है तो विविध भारती को ट्यून करना पड़ेगा, फिर विविध भारती के अमीन सयानी की आवाज आएगी। ऐसे धाम में जाके भी ट्यून करना पड़ेगा अपने आप, केवल ये शरीर कपड़ा वगैरह पहन के जाएंगे तो धाम में ट्यून होंगे ऐसी गारंटी नहीं है। तो ये ब्रजवासी जो है ना वो अपना ट्यूनर है, वो अपने को ट्यून करते हैं अच्छी तरह से, उनके साथ प्रेम संबंध होगा ना अपना, उनकी सेवा क्या करेंगे ना। सबसे बड़ा मैं बताता हूँ आपको, बरसाने वृंदावन में आपको अगर भाव को ग्रहण करना है ना, ब्रजवासियों की सेवा करो, ब्रजवासियों को प्रसन्न करो, उनका प्रिय बनो, वो आपको चाहें ऐसा बनो, वो चाहने लगे आपसे प्रेम करने लगे ऐसा व्यवहार करो उनसे, उनकी सेवा करो, उनको प्रसन्न करो, उनकी कठिनाई में उनको मदद करो। जब भी प्रसन्न होते ना तो राधा रानी प्रसन्न होती है, और तब जाकर ये ब्रज भाव जो है ना प्राप्त होता है। तो वहां पर हमारी एक माता है, अभी माता नहीं तो उसको बहन बोलते हैं, उनकी उम्र केवल 87 साल है। अपनी उम्र की 16 साल में वहां पर आई थी, 14-15 साल की ऐसे ही आई थी, और घूमते घूमते माता पिता के बरसाने आई थी। तभी तो कुछ काम भी सिखाने था, कोई रोटी बनाना है कुछ करना है, जवान लड़की थी, लेकिन ऐसा मन लग गया वापस ही नहीं गई। तो माता पिता को लगा कि क्या बचपन का खेल है, ऐसा जवानी में बहुत सारे ऐसे दिमाग में विचार आते रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे भाग जाएंगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वापस आते हैं। तो वापस आए कुछ दिन के बाद, पूछा नहीं नहीं मुझे नहीं आना है, और आए मुझे नहीं आना है, और आए मुझे नहीं आना है, पक्का हो गया। मतलब उस समय से लेकर आज 70 साल हो गए, अभी भी वही है। हाँ, और हमारी उनकी मुलाकात, उनका नाम है कुसुमलता देवी, फूल सखी। हाँ, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे हैं वृंदावन बरसाने के विषय में, मेरो प्यारो बरसानो, राधा तत्व सार, राधा गुण सागर, बहुत सुंदर पुस्तक लिखे हैं। तो उनको राधा रानी का दृष्टांत होता है कई बार, तो वो उनको एक बार दृष्टांत क्या हुआ। तो हमारे डॉक्टर साहब है उधर बरसाने में, इनका नाम है गौराम सुंदर प्रभु, डॉक्टर रंजीत वागले, और गौराम सुंदर यानी चैतन्य महाप्रभु, पर हमारा नाम विश्वरूप यानी चैतन्य महाप्रभु बड़े भाई। तो उनको राधा रानी का दृष्टांत दिया कि आज से तुम्हारे विश्वरूप बड़े भाई और गौरांग सुंदर छोटे भाई। अरे उम्र क्या है मैया आपकी, मतलब मैया मत कहो, तुम बड़े बड़े भाई हो, छोटी बहन हूँ आपकी मैं। अभी भी गले आके मिलती है मुझे। मेरे बड़े भैया हो, मेरे बड़े भैया हो, मैं भी उनके भाव का सम्मान करता हूँ। देखो ब्रजवासी व्यक्ति का भाव जो है समझना बहुत मुश्किल है, उसका आदर करना चाहिए। तो वो जो हमारी छोटी बहन है कुसुमलता देवी, उनकी उनकी एक उनका एक कमरा उधर जयपुर मंदिर में है, तो वहां पर हम जाते रहते हैं बहुत बार, प्रसाद पाते हैं बहुत बढ़िया से, श्री जी की सेवाएं करते। और अभी वो रहती है डवारे में, डवारे में कहा रंग देवी का गांव है वो, और डवारा गांव क्या है कभी आपको ले जाएंगे, जरूर आना, बहुत सुंदर वहां पर रत्न कुंड है, जहाँ पर राधा रानी ने मोतियों का खेती की थी और डायमंड बनाया था, पता है ना आपको, मैंने बताया आपको, तो वही गांव है वो, और वो रंग देवी का गांव है। तो वहां पर एक श्याम शिला है, और श्याम शिला पे कृष्ण भगवान बैठते थे सखाओं के साथ और मुरली बजाते थे, तो श्याम के ज्यादा संग होने से वो श्याम शिला वो भी काली हो गई है। एक ब्लूइश काली रंग की शिला है, बहुत बड़ी विशाल, एक टिकड़ी की तरह ही है, आपको दिखाई पड़ेगा। और वहां बैठकर मुरली बजाते थे, और रत्न कुंड में स्नान करने वाली गोपियों को आकर्षित करते थे अपनी मुरली की टांग से। फिर उस गांव में क्या लीला है, उस गांव में राधा रानी और कृष्ण भगवान गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे। देखो कृष्ण को नंद बाबा यशोदा गुड्डी दे रहे हैं गुड्डी, और राधा रानी को वृषभानु महाराज और कीर्ति माई गुड्डा दे रहे हैं। हाँ, कभी कभी वृषभानु महाराज ललिता को भी गुड्डा दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कथाएं हैं, चित्रपट भी वहां पर बना के रखे हुए हैं। और कृष्ण भगवान अपनी गुड्डी को लेकर नंदगांव से आते हैं घोड़े वोड़े घोड़ी पर बैठकर, और राधा रानी बरसाने से वहां पहुंचती है घोड़ा पर बैठकर अपना गुड्डा को लेकर, और गुड्डा गुड्डी का शादी करते हैं बहुत बढ़िया से, धूमधाम से महोत्सव बनाते हैं, बहुत सारे उधर दायरे में रखे हुए हैं, एक कमरा पूरा गुड्डियों से भरा हुआ है। हाँ, तोता तोती से कैसा बात करते हैं मैना से, और गुड्डा दे रहे हैं पुष्पानु महाराज राधा रानी को, यशोदा माई गुड्डा दे रही है राधा रानी को, ऐसे बहुत सारे वहां पर है। तो ये मैया के साथ हम जाते हैं वहां पर, तो मैया के वहां पर कृपा होने की वजह, मैया मतलब हमारी बहन, वहां होने से वो डबारे से भी थोड़ा सा प्रेम हो गया हमारा। हाँ, तो इस तरह से ब्रजवासियों की ही सेवा से, उनके ही प्रेम से ये ब्रज से हमारा संबंध होता है। तो ये मुझे आपको बताना था। तो अभी भानुगढ़ की कुछ कथा आपको बताने का मेरा दिल था, क्योंकि मैंने बताया अरे इतनी उत्कट लीला, इतनी अंतरंग लीला, ऐसी वो लीला वैसी लीला, अरे कंस को भी स्त्री बनाया, घोड़ा को भी घोड़ी बनाया, लेकिन ये सब करके किया क्या वो तो बताया नहीं कौन सी लीलाएं ऐसी की वहां पर जो इतना इसके लिए प्रिपरेशन किया गया, इतना भाव बनाया गया, इतना एटमोस्फेयर बनाया गया, कंस को भी वहां से आने के लिए डरा कर मना कर दिया गया। तो ये है कि देखिए एक बार क्या हुआ, सब गोपियां बहुत तंग आ गई, बहुत परेशान हो गई कि ये कृष्ण है ना इतना इतना क्या कहते हैं ना स्फूर्त चोर है कि हम बातों में उसके लग जाते हैं, गुम हो जाते हैं बातों में। तो कुछ देर बाद लगता है कि यहाँ का मणि गायब, यहाँ का मणि गायब, काले का मणि गायब, इधर का मणि गायब, इधर का अलंकार गायब, कान गायब, कुंडली गायब। अरे क्या है, जब चाहे तभी उससे मिलते हैं तो कुछ ना कुछ कमी हो जाती है अपने शरीर में। तो पता है पकड़ते उसको और जेब में हाथ डालते उसको, जेब में कोई कुंडल मिलता है, कुछ नाक की नथनी मिलती है, कुछ यहाँ का मोती मिलता है। बोले कैसे तुमने चुराया इसको? नहीं नहीं मैंने चुराया नहीं, वो मेरे हाथ है ना, वो तुमको जब मिलता हूँ ना तो मेरे हाथ सब अपने नियंत्रण के बाहर चले जाते हैं और अपनी मर्जी से कुछ कार्य करते हैं, पर कब तुम्हारे कान में पहुंचते हैं, कभी कंडल खींचते हैं, जेब में डालते, कुछ समझ में नहीं आता है। ले लो ले लो वापस ले लो, मैंने चोरी नहीं करना, ले लो ले लो ऐसे। लेकिन जानते थे ये बहुत बहुत क्या कहते हैं उसको, बच्चा तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत चालाक लड़का है ये, बहुत हमारे चोरी करने में बहुत ही चोर अग्रगण्य है बहुत। अब इसको एक बार सबक सिखाना चाहिए, ऐसा सबक सिखाएंगे ना याद रहेगा जिंदगी भर उसको। ठीक है चलो, तो लोग योजना बनाते हैं, ललिता जी इतनी प्रधान है योजना बनाने में, और योजना बनाते हैं कि ऐसा करेंगे जब आएंगे ना हमको छेड़ने के लिए रास्ता में रोक कर, ऐसा उस समय कुछ झगड़ा वगड़ा नहीं करेंगे, क्या चाहिए आपको, मक्खन खाना खाओ, लोग चाहे वो दे देंगे। उस दिन बड़ी फिस्ट बना के रखेंगे, पूरा भोजन, अनेक सारे व्यंजन बना के रखेंगे, और जैसे ही मिलेंगे ना और वो डंडा दिखाकर वो भैंस करना शुरू करेंगे, सुनेंगे कोई चिंता मत करो, तुम्हारे लिए बढ़िया भोजन बना के रखा है, माखन मिश्री सब मक्खन, क्या चाहिए आपको, बैठ जाओ बस आप। तो आ गए हमारे कन्हैया महाराज टीम लेकर आ गए, पूरे डंडा वंडा लेकर रास्ता रोक लिया और चलो टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा अपना रोड का चालू कर दिया। तो राधा रानी के गोपिया कहते हैं अरे इतना क्यों कष्ट करते हो, आ जाओ तुम्हारे लिए पंगत लगा के रखे, देखो कितना मुश्किल बिठा के रखा है, पत्थर लगा के रखे हैं, इतने व्यंजन बना के रखे, आ जाओ बैठो बैठो। अरे गोपी सब बाल बाल आकाश में देख रहे हैं, अरे सूरज कहाँ से आया, पश्चिम तो पश्चिम से क्यों आया, आज सूरज से नहीं आया, क्या हो गया सूरज को आज, क्या सब तारे बदली हो गए, सब सितारे अलग जगह पर बैठे, क्या बात क्या है। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ भोजन करो फर्स्ट क्लास, सब कृष्ण बलराम लाइन से बैठते दोनों तरफ, सब गोपियां जो है ना इतना बढ़िया व्यंजन बना के रखा है, क्या बताएं आपको, इतने सारे व्यंजन बना के रखे हैं, इतना भरपेट खिलाते हैं उनको ना प्रेम से, और लो मक्खन लो, दही लो, घी लो, दूध लो, क्या चाहिए खीर लो, गुलाब खीर लो, केसरी खीर लो, श्रीखंड भात लो, बासुंदी भात लो, ये लो वो लो, बुंदी का लड्डू ले लो, चूरमा का लड्डू लो, चंद्रकला लो। अरे क्या इतना अपने आप को भाग्यवान समझते हैं, और ना कंट तक खिला देते उनको, फिर भी और लो। तो हमारे कृष्ण भगवान बलराम क्या करते हैं, थोड़ा आधा लेट जाते हैं ऐसे, भारी होकर आधा लेट जाते हैं, और आधा लेट के भी खा रहे हैं और खिला रहे हैं उसको, उसके बाद इतना भारी होते तो और पूरा लेट जाते हैं और लेट के भी खाते हैं, क्योंकि सखियां आग्रह करना छोड़ती नहीं है सब लोग ना कुछ समय तक सो के खाते हैं और कुछ देर बाद में वहीं सो जाते हैं, उठ ही नहीं सकते हाथ धोने के लिए भी, वहीं पर ढेर हो जाते हैं। राधा रानी गोपियां सब देखती हैं कि सब लोग अच्छी तरह सो गए हैं, अभी इतना खिलाने के बाद में, हमारे मेडिकल में कहते हैं ना हाइपरग्लाइसीमिया, इतना शुगर लेवल बढ़ा दिया दिमाग में ना, दिमाग सा डल हो गया पूरा, कम सो गए पूरे, सब परीक्षा करते हैं कि सो गए पूरे। फिर सखियां आती हैं और कृष्ण भगवान का सारा श्रृंगार उतार देते हैं, पैर के पैंजन से लेकर कमर कांचनी से लेकर कमर पट्टा, गले में जितने हार पहने हुए हैं, हाथ में अंगूठियां पहनी है, कलाई बंद है, बाजू बंद है, क्या कहें आपको, कान में कुंडल है मकर कुंडल, और कैसे मणि लगा के रखे हैं, और आप ऊपर सोने की श्रृंखला लगाई, सोने की चेन, उसके ऊपर मोर पंख लगा के रखा है, हर एक यहां पर एक मणि है वो भी निकाल लेते, सब श्रृंगार उतारते हैं, कृष्ण पूरा श्रृंगार विहीन हो जाता है, सारा श्रृंगार इकट्ठा करते हैं, अभी इसको सबक सिखाएंगे, चलो ले चलो उसको, सब ले चलते अपने राधा रानी के महल में जमा करते हैं उसको। बहुत देर बाद एक ग्लानी उतरती है, बहुत घंटों के बाद में, तो इनको नींद खुलती है उनकी। हाँ देखते हैं इधर उधर, अरे बदन पे कोई है नहीं, कुछ अलंकारी नहीं है, सब खत्म है पूरा। और सखाओं का भी निकाल लेते हैं, लेकिन मेन उनका कृष्ण का टारगेट था। तो कृष्ण देखते हैं एक एक भी अलंकार नहीं, क्या बात है। तो कृष्ण तो अंतर्यामी समझ जाते हैं कि हमारे साथ में बहुत चालाकी की गई है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेंगे, चलो घर चलेंगे, अभी आगे देखेंगे। घर पहुंचते हैं और मैया देखते, क्या कभी कभी वो मैया है ना, तो क्या करती है कृष्ण को ना तीन तीन बार पायल पायल कस के बांधती है, तीन तीन चक्र चलाती है, क्योंकि ना ऐसा नटराज है ना, ये नाचता ऐसे ना, दो दो मील तक इसके पायल उड़ जाते हैं इस वन से उस वन में। जब नाचता है ना तो पायल निकल कर दूसरे वन में गिर जाती है, तो तीन पहनाते तो दो आते वक्त दो, कभी कभी एक। उससे कहाँ गए पता नहीं, नाच रहा था मैं कहाँ पहुंच गए। इसलिए मैया कस के बांधती है, तो मैया को चिंता है ना कि कितना वापस लेके आया आज, तीन बंदे थे, अरे एक भी नहीं आज, अरे चलो पायल तो छोड़ो, कमर काचनी भी नहीं, हाँ कोई अलंकार ही नहीं बचाया, मोर पंख भी नहीं बचाया, मुरली भी नहीं बची, बोलो ऐसा खाली हाथ लौट के आया, क्या हुआ। चलो भैया आज चिंता मत करो, सब आ जाएगा वापस, डोंट वरी, आज के लिए छोड़ दो मुझे, मैं आपको सब वापस ला के देता। सो गया, लोरी वरी सुना, मक्खन मक्खन खाया, फर्स्ट क्लास सो गया। अगले दिन उठा, भगवान को राधा यशोदा माई ने उठाया, गीत गाया फर्स्ट क्लास, हाँ रात को सुलाया, सुनना है क्या आपको, सो जा रे लाल सो जा, तेरी मैया सुलाती है, चंदन का बना पलना, रेशम की बनी डोरी, माँ तुझको सुलाती है, तू सो जा मेरे प्यारे, जब होगी सुबह की बेला मैं तुझको जगाऊंगी, जब होगी सुबह की बेला मैं तुझको जगाऊंगी, माखन और मिश्री का तोहे भोग लगाऊंगी, सो जा रे लाल सो जा, तेरी मैया सुलाती है, आपको सोना नहीं है लाला को सोना है, तो आप ही सो जाएंगे। तो कथा कौन सुनेगा फिर, सुला देती है, सुबह उठ जाता है, हाँ अंगाई कुछ सुबह के गीत गाते हैं, और श्रृंगार करने का समय होता है तो गायब हो जाता। कुछ देर बाद एक बहुत सुंदर कन्या आती है, इतना बड़ा घूंघट मार के, इतना बड़ा इधर तक कमर तक, और यशोदा माई को प्रणाम करती है, यशोदा बोलते कौन की लाली है, कांते कांते भाई है तू, कब से आई है नंदगांव में, तो वो शर्माती है, हाँ घूंघट तो ऊपर करती नहीं है, बार बार मैया पूछते है कौन की है वो, कौन की बहू है, अचानक घूंघट उठा देती है, और कौन है, कृष्ण स्वयं वहां पर श्यामा गोपी बने हुए हैं। तो यशोदा मैया पूछते है क्या बात है, मैया बाद में बताऊंगो थोड़ा रुको, थोड़ा घूंघट मारते है फिर और जाते है बरसाने की तरफ, हाँ श्यामा गोपी बनकर जा रहे हैं, पहले मैं आपको रहस्य भेद कर दिया लेकिन फिर कोई बात नहीं। तो ये गोपी यहाँ पहुंचती बरसाने किनारे में, और इतनी सुंदर गोपी है, लेकिन इतने सुंदर अंग है उसके सुगंधित, तो वहां पहुंचती है, और कृष्णा श्याम सुंदर गिर जाती है तुरंत, तो सखियां एकदम आ जाती, चार पांच सखियां, अरे बाप रे क्या प्रेम है इनका, कौन कौन की बहू है ये, कहाँ की है। तो बोलती है नंदगांव से हूँ, अभी अभी ब्याही हूँ, नंदगांव में ब्याह कर आई हूँ, नाम क्या है तेरो, नाम श्यामा गोपी है, श्यामा सखी। अच्छा आप बोलते ना पिता कौन है, माता कौन है, भाई भैया कौन है, कहाँ से आई हो, कौन सा ननिहाल कहाँ है, मैका कहाँ है, और ससुराल कहाँ है, प्रिंस के घर में ब्याह हो, बहुत सारा प्रश्न पूछते, बीच में श्याम सुंदर गिर जाती है, और सखी अकट हो जाती, अरे क्या प्रेम है इसका, हम में से किसी को इतना प्रेम नहीं है, इतना प्रेम है, नाम पुकारती बेहोश हो रही है, कितना प्रेम है इसको। देखो गोपियों में क्या होता है, एक बात है उनके अंदर ना ईर्ष्या नहीं होती कभी। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझना, हमसे अधिक कोई कृष्ण से प्रेम करता है तो उस पर ईर्ष्या नहीं होती है, प्रेम होता है उसके लिए, आदर होता है, सम्मान होता है उसके प्रति। हमारा कैसा है, हमारे हॉस्पिटल में हमसे कोई बड़ा बन गया तो अरे बाप रे हमारी कुर्सी तो नहीं लेगा ये, ऐसा प्रश्न होता है मन में। ये भौतिक दुनिया का स्वभाव है। दिव्य दुनिया का स्वभाव क्या है कि जो हमसे आगे है प्रेम में उसको देखकर और खुशी होती है। हाँ व्हेन डिवोटीज आर ग्लोरिफाइड द ट्रू वैष्णव बिकम्स वेरी हैप्पी, वाओ वंडरफुल। तो ऐसे ना और दो चार और पंद्रह और बीस पचास इकट्ठा होते, ज्यादा इकट्ठा होते एक बार और शाम सुंदर ठाक। ऐसे ना हजारों गोपियां तैयार हो जाती है, सब लोग यही बोलते हैं पता है इतना प्रेम है इसके अंदर, पता है ये शाम सुंदर का नाम पुकारते ही बेहोश हो जाती है, वहां प्रेम कितना प्रेम है। तो सब लोग ना, फिर ललिता विशाखा भी आ जाती है, हाँ अष्टसखी भी आ जाती है और सब लोग यही चर्चा करते हैं बाप रे कहाँ से आई है गोपी। तो फिर ललिता विशाखा आके देखती है उनके सामने भी, कन्हैया करके थाड़ करके गिर जाती है, अरे बाप रे। तो ललिता कहती है इसको राधा रानी से मिलाना चाहिए क्योंकि राधा रानी इसको देखकर बड़ी प्रसन्न होगी, जो भी कृष्ण पर प्रेम करते हैं राधा रानी बड़ी कृपा करेगी इस पर। और उसने कहा भी था कि राधा से मिलने आई हूं मैं, तो उसको जरूर मिलाना चाहिए, लेकिन संभालना चाहिए, कहीं बार बार बेहोश हो गई तो परेशान हो जाएगी। तो उसको ना बड़ा संभाल के पकड़ के ना बड़े भाव में रहती है, वो घूंघट मार के रखा है बहुत जोरदार, और राधा रानी के महल के सामने खड़ा करते हैं भानुगढ़ के सामने, और राधे विश्वानु नंदिनी पुकार रहे उसको। तो राधा रानी भाग के आती है, सखियों का आवाज सुनकर इतना झुंड कहां से आ रहा है। तो राधा रानी सामने आते ही ना नंद नंदन श्याम सुंदर करके धाड़ कर गिर जाती, राधा रानी खुद परेशान, अरे बाप रे इतना प्रेम नाम पुकारते ही। और इस पहले कई बार तो वो जल छिड़का ये किया वो किया हवा दिया तो जग गई बेचारी, इस बार तो जल छिड़का क्या क्या किया बहुत सारे मंत्र बोले कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है, मानो गई शरीर छोड़ दिया उसने प्रेम से। तो राधा कहती है ललिता जा रुई रुई लेके आ, कॉटन लेके आ, उसके नाक पे लगा के देख क्या हवा चल रही कि नहीं चल रही। तो शरीर निश्चिष्ट हो गया पूरा, कुछ किधर भी कुछ जान नहीं है, लेकिन ना एकदम हल्के से थोड़ा सा रोई हिल रही है, लेकिन लगता है कि वो भी हिलना बंद हो जाएगी, अभी जाएगी निकल के, अभी क्या अभी तो परेशान हो गए सब लोग, बाप रे अभी ये गुजर गई तो कैसे होगा, इतना प्रेम करने वाली गोपी गुजर जाएगी तो कैसे होगा। तो भी समस्या आती है, ललिता अपनी सबसे पहली है, उसके बाद समस्या समाधान करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया ना, तो ललिता देवी क्या करना चाहिए अभी। तो ललिता देवी कहती है क्या करे क्या करे, कृष्ण के विरह में इतना रो रही है, कृष्ण के विरह में कैसे कृष्ण को लाएंगे, कृष्ण तो है नहीं यहाँ पर, कृष्ण को लाएंगे तो विरह ठंडा हो जाएगा, कृष्ण तो है नहीं, क्या करे क्या करे। आइडिया, राधा रानी को कृष्ण बनाते हैं, देखो कल ही तो हमने सब जेवर चुराए थे ना, सब मोर पंख मुरली सब कुछ अलंकार श्रृंगार सब चुराया था, बस कलर की एक बात है, उसको नीला रंग लगा देंगे, पूरा मेकअप कर देंगे उसको, और धोती कुर्ता पहनाएंगे फर्स्ट क्लास, पीली धोती पहनाएंगे, दुपट्टा पहनाएंगे, लकुटी देंगे हाथ में और मुरली भी देंगे फर्स्ट क्लास, ऐसे खड़ा कर देंगे उसको राधा रानी को, तो थोड़ा इसका विराज विराज शांत हो जाएगा। तो आदि गोपियां रुक गई वहां पर हवा देने के लिए, उसको भी जान न चली जाए इसकी, आदि गोपी अंदर चली गई, ललिता विशाखा बोले राधा रानी को पूरा श्रृंगार करना है, फटाफट करना है अभी कुछ टाइम में आराम से प्रेम से करने के लिए, बहुत जल्दी जल्दी ना सब श्रृंगार जैसे कृष्ण पहनते हैं ना, पैर में घुंघरू कमर काचनी गले में हार बलाई कलाई बंद बाजू बंद सब कुछ पहना दिया, आखिर में सांकड़ लगा दी, मोरपंख बिठा दिया उसके ऊपर, हाथ में मुरली दी, राधा रानी आ जाओ, बाहर आकर दरवाजे के बाहर द्वार के बाहर आकर खड़ा कर दिया से त्रिभंग पोजीशन में, हाँ पोजीशन दे दिया उनको पूरा, पैर ऐसे मोड़ दिए कमर मोड़ दिया गर्दन मोड़ दी हाथ में मुरली दिया खड़ा कर दिया, अभी ऐसे खड़े रहो हाँ मुरली बजाना आरंभ करो। तो मुरली बजाना आरंभ कर दिया राधा रानी, आप जानते हैं ना राधा रानी तो मुरली की गुरु है कृष्ण की, तो उनको तो मुरली बजाना आता है, बहुत बढ़िया मुरली बजाई। और ये लोग गए सखी के पास श्यामा सखी, अरे श्यामा सखी उठो देखो कृष्ण आए हैं, देखो कृष्ण आए हैं, देखो मुरली बजा रहे, सुना तुमने सुना। तो श्यामा सखी ऐसे कूदी इतना जोर से कूदी पूरा घूंघट घूंघट फेंक दिया हाँ सब वस्त्र वस्त्र फेंक दिया, बोला ये देखो मैंने तुमको पकड़ा, बड़े चालाक समझते हो अपने आप को, हाँ मुझसे छीनते हो, चोरी मेरी करते हो, चलो उतारो सब उतारो, अभी के अभी उतारो, बड़े चालाक बनते हो गोपी, गोपी सबका सर एकदम झुक गया पूरा, अरे अचानक क्या हो गया, ऐसा जंप मारा ना उसने, सब घूंघट वूंघट फेंक दिया पूरा, अपने मूल स्वरूप को प्रकट किया, अरे श्यामा सखी बेकी कुछ नहीं, ये मैं ही हूँ कन्हैया नंदन नंदन श्याम सुंदर हूं मैं। आप लोग अपने आप को बड़ी चालाक समझते हो, अगली बार चालाकी करोगे ना तो और से बड़े दंड दूंगा मैं इसका, उतारो सब उतारो अभी के भी उतारो, क्या करे बेचारे, रंगे हाथ पकड़ गए ना, और सभी सामान के साथ पकड़े, ऐसा नहीं कि घर में कुछ रखा है बाहर कुछ रखा है, पूरा सामान पहना था उसको, ललिता विशाखा सब सखियां लग गई बेचारी, एक एक उतारा, जैसे उतार रहे ना ये अपने को पहन रहे हैं, जिस सिक्वेंस में उतार रहे ना तो सिक्वेंस में अपने आप को श्रृंगार कर रहे हैं सारा होता, आखिर में वो मोर पंख भी उतार देते हैं, श्रृंखला भी खुद बांधते हैं, मुरली छीन लेते हैं, ऐसा पोजन देते हैं, मुरली बजाते हैं, बाय चले जाते हैं। तो अभी आप बताइए ये लीला हो रही है तो वहां पर बीच में केशी आ सकता है क्या, करके आ सकता है क्या, इम्पॉसिबल है, अरे इतनी सुंदर लीला हो रही है उसमें राक्षस आएगा तो कैसे होगा। अभी और एक सुनाता हूँ, ये जो भानु महल है ना ये तो लीलाओं का भंडार है पूरा, इतना लीलाओं का भंडार है, वहां पर कृष्ण जो ना हमेशा छद्म लेकर आते हैं, छद्म मानी रूप बदल कर फेस बदल कर आते हैं, तो राधा रानी के मन में बहुत इच्छा थी कि मेरे मुझे कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो जाए, तो वो किसी ऋषि के पास गई, बताया क्या करूं मैं, तो ऋषि ने बताया कि आप तुलसी देवी की पूजा करो, वृंदा देवी की पूजा करो, बहुत लंबा व्रत बताया, तो गर्ग संहिता में उसका पूरा विस्तार में वर्णन दिया है, और राधा रानी ने बड़े ही प्रेम से ना तुलसी देवी का पूरा व्रत किया प्रसन्न करने के लिए, तो कहते हैं व्रत के ही समापन पे ना रत्न के सिंहासन पर बैठकर विमान पे बैठकर वृंदा देवी आकाश से नीचे आई, और राधा रानी के सामने वो क्या कहते हैं लैंड हो गई, तो राधा रानी ने उनका पूजन किया, वृंदा देवी का प्रसन्न किया, भोग लगाया, आरती की, और वृंदा देवी ने कहा क्या वर चाहती हूँ, राधा रानी ने कहा कि मैं मेरे इष्ट से मिलन चाहती हूँ, तथास्तु बहुत जल्दी आपके इष्ट से आपकी मुलाकात होगी, तो व्रत संपन्न हो गया, आशीर्वाद मिल गया। तो अभी तो ये सब लीला है, वृंदा देवी तो जानती है कि राधा रानी लीला कर रही है, मुझे अपनी सेवा करनी है, एक ड्रामा में अपना रोल करना है। तो कृष्ण भगवान समझ जाते हैं कि राधा रानी ने मेरे लिए ये सब व्रत पूरा किया है, वृंदा देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया है, कभी इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो अभी बहुत बहुत लंबी कथा है, मैं आपको संक्षेप बताता हूँ। तो गोप देवी इस गोपी का रूप धारण करके बड़ा सुंदर श्रृंगार करके, वो घूंघट वगैरह मार के नहीं, पूरा ओपन, लेकिन बहुत ही सुंदर श्रृंगार करके गोप देवी बनकर कृष्ण भगवान राधा रानी के महल में आते हैं, और ये गोप देवी ऐसे प्रवेश करते ना सब लोग प्रभावित होते हैं उसके उसके भाव को देखकर, उसको ना एकत्र होकर बड़े प्रेम से राधा रानी के पास लेके जाते हैं, उसने कहा था मुझे राधा रानी से मिलना है, तो राधा रानी से मिलती है और कहती है कि राधा रानी पूछती है तुम कहाँ से आई हो, तो कहती है मैं नंदगांव से आई हूँ, फलाना घर में की बहू हूँ मैं, और मैंने आपके विषय में बहुत सुना है कि तुम बड़े कृष्ण से प्रेम करती हो, तो मुझे ना थोड़ी चिंता लगी आपके लिए, क्योंकि आप ऐसे काले कलूटे कपटी और चोर चरित्रहीन बालक के ऊपर प्रेम करती हो, मुझे आपके लिए चिंता हो रही थी कि ऐसे इतनी आप श्रेष्ठ कन्या हो, इतनी सद्गुण संपन्न हो, शालीन हो, कुलीन हो, इतनी सतीत्व के द्वारा आप सुशोभित हो, तो आप जैसे कुलीन कन्या को ऐसे चरित्र वाले बालक पर प्रेम नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको मैं सतर्क करने को आई हूं। अरे मैं जब आ रही थी रास्ता में पकड़ लिया मुझे उसने, हाँ कोई मर्यादा नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरा हाथ पकड़ लिया रास्ते में, अरे मैं कौन की बहू हूँ, मैं भी अपनी कुछ ही श्रृंगार में अपने मर्यादा में हूँ, और वाको कुछ मर्यादा है ना है, रास्ता में हाथ पकड़ लियो मारो, मेरो पकड़ लियो और जबरदस्ती खींच रो है हाथ मेरो, तो मैं आपको सावधान करने आई हूँ। तो राधा रानी सुन रही है, हाँ आग बबूला हो रही सुनकर, कृष्ण के विषय में कह रही है, बहुत सारी बातें कहती है वो कि कैसा ये चोर है, कैसा ये ऐसा है वैसा है। तो लंबा संवाद है उनका, उसमें ना एक एक निंदा करती है ना, वो सारी निंदाओं का खंडन राधा रानी करती है, ऐसे आवेश में आकर एक एक चीज को। तुम उसको चोर कहती हो? अरे वो तो वैकुंठ के नाथ हैं, त्रिभुवन के नाथ हैं, सारे देवता चरणों में गिरते हैं उनके। और तुम उनको क्या कहते हैं, ग्वाला, ऐसे अनपढ़ गंवार ग्वाला कहते हो? अरे वो दिन रात गऊओं का नाम चिंतन करते हैं, मणि लेकर उनका नाम जपते रहते हैं, गऊ के रज में घूमते रहते हैं। उनसे बड़ा कोई साधन करने वाला होगा क्या? क्योंकि वो बोलते हैं ना कि ना कोई रिवाज, ना कोई भजन, ना कोई चिंतन, ना कोई साधना, कुछ है नहीं उसके अंदर, तो धर्म का कोई प्रभाव ही नहीं उसके ऊपर, तो धर्मशीलता है नहीं। तो कहते हैं सबसे बड़ा ऊंचा साधन करता है वो, गऊओं को चलाता है, गऊ के अंदर सारे देवता है, सारे भगवान भी लक्ष्मी विराजमान है उसके अंदर, उन सारे अनंत गऊओं को चलाता है रोज, उनका दूध पीता है और उनके चरणों की धूल है ना उससे अपना तिलक करता है वो, अपनी लंबी मणि की माला है उसके अंदर गोरी कामरी धूमरी तिलकिनी मृदंगिनी उनके नामों का जप करता है रोज, नृत्य गोपाल जी के मंदिर के पास रोज सबका जप करता है। और गऊ नाम के जप के अलावा कोई भजन होता है क्या? क्या कह रहे हो तुम कि भजन नहीं करता? ऐसे करके ना हर एक बात का खंडन करते हैं, और राधा रानी को हर एक खंडन करते करते ज्यादा क्रोध आ रहा है, द्वेष में आ रही है, आवेश में आ रही है, और ये है ना ऐसा कांपने लग रहे हैं, क्योंकि कांपने को लग रहे हैं उसका प्रेम देखकर ना कृष्ण गदगद हो रहे हैं, और गोप देवी के स्वरूप में ना एक एक उत्तर देखकर ऐसा गदगद हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं। बाद में ना गोप देवी को टेंशन आता है कि अभी कितने समय तक मैं छद्म छद्म जो है ना बनाए रखने में समर्थ रहूंगी, हाउ लॉन्ग आई विल बी एबल टू मेंटेन माय छद्म ऑफ गोप देवी। तो बाद में कहते हैं कि इतना प्रेम करते हो तुम इस चरित्रहीन व्यक्ति से, अभी क्या ना उनको सटकना है वहां से अभी, क्योंकि और ज्यादा अगर खड़े रहेंगे ना तो उनका उनका छद्म वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, उनका रूप ऐसा प्रकट हो जाएगा, तो अभी उनको भागना है वहां से। तो क्या करते हैं, अच्छा ठीक है तुम मेरी बात समझते नहीं हो, मैं इतना समझाने आई हूँ फिर भी तुम समझते नहीं हो, उसी के पीछे चरित्रहीन व्यक्ति के पीछे तुम्हारा दिल लगा हुआ है, जो करना है करो, अभी आखिरी बात बोलती हूँ, अगर तुम्हारा इस पर इतना प्रेम है और वो सही आदमी है तो तुम उसका चिंतन करो अभी, और अगर तुम्हारा उस पर सही प्रेम है तो तुम्हारे सामने अभी वो प्रकट होना चाहिए, तब मैं मान लूंगी कि तुम्हारा सही प्रेम उस पर है, वो भी बहुत चरित्र संपन्न व्यक्ति है। तो राधा रानी तुरंत वहां बैठ गई, तुरंत आंख में बंद कर ली, पद्मासन लगा दिया और ऐसा ध्यान लगाया, हमारा जैसा नहीं, हाँ जब जब करते तुरंत छपकी आ जाते, वो नींद आ जाती, ऐसा ध्यान लगाया, गहरा ध्यान लगाया, और जैसे ही आंखें बंद की ना राधा रानी ने, ये सटक गए गोप देवी, तुरंत पीछे गए, पूरा श्रृंगार उतार दिया, पूरा अपना श्रृंगार उतार के मुरली धारण करके आ गए और प्रकट हो गए तुरंत, और राधा रानी को पुकारा, राधा रानी ने आंखें खोली, बोले श्याम सुंदर जी आप आ गए, मैं परीक्षा में पास हो गई, मैं हाँ मेरी परीक्षा ली जा रही थी कि अगर मेरा ध्यान और मेरा प्रेम आपके ऊपर सही है तो आप आ जाएंगे, कितनी बड़ी बात है। लेकिन वो गोप देवी कहाँ गई, गोप देवी कहाँ गई, वो गोप देवी कहाँ गई जिसने कहा था? बोले कौन गोप देवी, मैं भी भाग भाग के आपको मिलने को आ रहा था तो वो काली कलोटी औरत मुझे मिली, हाँ वो दुष्ट औरत है, वो बहुत निंदा करती है, कभी मिलना नहीं उसको, कभी भ्रष्ट करेगी मन को आपको, वो कभी मिलना नहीं उसको। ऐसा कहते हैं राधा रानी को लेकर लीला करने चले जाते। तो ये सुंदर लीलाएं हो रही है भानु महल में, तो राक्षस नहीं आ सकते उधर, है ना। तो वहां पर वो फूल बेचने वाले बनकर आते हैं, कभी कभी मेहंदी लगाने वाले बनकर आते हैं, कभी झाड़ू वाले बनकर आते हैं, कभी ज्योतिषी बनकर आते हैं, कभी वो हाथ देखने वाले है ना वो ब्रह्मचारी बनकर आते हैं। बहुत सुंदर सुंदर कथा है, बताओ बताओ हमारे हाथ में क्या लिखा है? नहीं 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 मैं लड़कियों के हाथ नहीं पकड़ता, मैं तो बड़ा ब्रह्मचारी हूँ, मेरे काशी में गुरु हैं और मैं ऐसे किसी का लड़के का नहीं, नहीं दूर से पकड़ो, हमने हाथ लगाएंगे, हम दूर से पकड़ेंगे, ऐसे दूर से। तो देखते हैं बोलते हाँ लगता है तुम सब लोगों के हाथ में लिखा है कि तुम एक ही व्यक्ति पर प्रेम करते हो। अरे ये तो सब कुछ मालूम है इसको, बाप रे हमारा पूरा पोल खुल जाएगा। नहीं 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 कोई बात नहीं, कोई हम समझते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं फिर वो हमारे आपको अपने इष्ट को प्राप्त नहीं करना है, करना है जरूर करना है, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे पूरा शर्म करते हैं, कभी ना ऐसे बरसाने के रोड पे खड़े हो जाते हैं, ऐसे कंकड़ बीनते हैं। तो भाई ग्वाल बाल आते वहां से पुरुष लोग, अरे कन्हैया क्या कर रहे हो, मैं कंकड़ बिन रहा हूँ। तो कंकड़ क्यों बिन रहे हो, रास्ता साफ हो जाएगा, अच्छा है। लेकिन कंकड़ बिनने का बहाना क्या है, राधा रानी को देखना है, रह नहीं सकते उसके बिना, ज्यादा देर नंदगांव में टिक नहीं सकते हैं, बार बार भाग के आते हैं। और बहाना तो बनाना चाहिए ना कुछ ना कुछ, कभी झाड़ू बने बुहारी करने वाले बन के आते हैं, कुछ कुछ बन के आते हैं, कभी कुछ बन के आते हैं। तो ये सब छद्म लीला अनंत प्रकार की है, ब्रह्मचारी लीला, सन्यासी लीला, बाबा लीला, बहुत सारा वेश करके आते हैं, कभी ढाड़ीन कभी मालीन बनकर आते हैं। तो ऐसा है ये बरसाना धाम, राधा रानी का उत्कट प्रेम वहां प्रकट होता है और राधा रानी की कृपा भी बड़ा अगाध है। देखिए वहां पर एक बार एक भंगी जो है ना वो बुहारी कर रहा था सीढ़ियों पर, जैसे हमारे मदन मोहन जी बाबा थे, और वृंदावन वृंदावन कहिए राधे राधे पुकारिए, ऐसे नाम लेकर नाम भाव गदगद होकर वो बुहारी कर रहे हैं सीढ़ियों की, राधा रानी के महल की जो सीढ़ियां हैं, इतना सुंदर भाव है उसका कि वो राधा रानी और कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। और एक बड़ा सा पेड़ है, उसकी एक बड़ी शाखा जो है उसके नीचे ये शाखा ऐसी ऊपर आ रही है और नीचे ये सीढ़ियों पर बुहारी कर रहा है। तो ऊपर उस शाखा पर ना राधा और कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे बैठे हैं, देखो एक ही शाखा पर बैठे ऐसे पैर हिला रहे हैं, राधा रानी कृष्ण से कह रहे देखो कितना अच्छा भक्त है, कितने प्रेम से सेवा कर रहे हैं, कितना प्रेम है उसके हृदय में। कन्हैया इसको कुछ ये ना पारितोषिक देना चाहिए, कुछ बख्शिश देना चाहिए। हाँ हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं, इतना बड़ा भक्त है उसको तो प्रेम से देना चाहिए। तो एक सेकेंड रुकिए, हाँ थोड़ा सा हरे कृष्ण मंत्र बोलिए सब लोग।